शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 अगस्त साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने आज ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज क्या है वो समझाया है। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही होता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, वो तो हमारे ही समान मनुष्य है, लेकिन वो शिव बाबा का बोलता चलता अकाल तत्व है। बाबा को जरूर तत्व तो चाहिए, फिर बाप ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों को रचते हैं और इस ज्ञान यज्ञ को रचते हैं। तो ये राज तुम बच्चे ही जानते हो, और जो जानते हैं बाबा ने कहा वही इस राज को समझा सकते हैं, दुनिया वाले तो इसमें मूंझते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि जो श्री कृष्ण है उसको प्रिंस कहते हैं, तो वो प्रिंस है तो जरूर उसका राजा के घर में ही जन्म होगा, साहूकार के घर में जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के पद और साहूकार के पद में अंतर होता है। लेकिन जिसके यहाँ जन्म होता है उनका पद श्री कृष्ण से कम है, वो सिर्फ उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं, बाकी उनको कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण का नाम बाला है क्योंकि उनकी पढ़ाई उनसे ऊंच है ना, उन्होंने ऊंचा पद पाया। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे जो हैं वो माया की उलझन में आकर के दुखी हो जाते हैं, तो अगर सुखदाता बाप के बच्चे बनकर के भी दुख की फीलिंग में आते हैं तो फिर ये तुम्हारा पुराना कड़ा कर्म भोग है। तो बाबा ने कहा ये पुराने कर्म भोग को योग बल से खत्म करना है, और अगर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो फिर पवित्र जरूर बनना है, हार खा करके अपना पद कम नहीं करना है। तो सुनते हैं। मीठे बच्चे अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तत्व यह है, जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तत्व यह है, जब वे ब्रह्मा में आते हैं तो तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है अकलमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं, अकलमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं, किस राज को? उत्तर है ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सु विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं, ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है, यह सब राज अकलमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। तो अभी हम सब ने तो ये राज समझ लिया है ना, किसी को इसमें संशय तो नहीं है, ब्रह्मा बाबा का राज और ब्राह्मणों का राज। तो हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। तो बाबा ने कहा घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे, ऐसे दुनिया वाले मूंझते ना कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश वाले चित्र में इन ब्रह्मा को क्यों बिठाया है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच है भगवान, हम शिव बाबा की महिमा को यथार्थ रीति से जानते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंजते हैं ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख के, क्योंकि हम उनके नीचे लिखते हैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा मूंजते ये ब्रह्मा कैसे हो सकता, ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी, अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके क्योंकि प्रजा तो कहाँ है नीचे। तो फिर बाबा ने कहा वो सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं है, वो तो संपूर्ण ब्रह्मा है, वहां रचना होती नहीं, इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। जब लोगों को ये राज समझाते हैं तो फिर जो शास्त्रवादी हैं वो फिर विवाद करते हैं, समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धी, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। तो राशि मिलती है ना, ब्राह्मण शब्द किससे निकला है, ब्रह्मा से, आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते हैं, वैसे आदि देव कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में उनको देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। दुनिया में भी तो लोग अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनसे पूछना चाहिए ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा जो है वो शिव बाबा का रथ है, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था, 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, ब्रह्मा बाबा का जन्म पत्री का नाम क्या था, दादा लेखराज। तो बाबा ने कहा ये वो नाम तो है नहीं, है तो मनुष्य ना, फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बाबा ने सबके अव्यक्त नाम की लिस्ट भेजी थी ना वतन से, तो सभी के नाम बदल दिए जो भी ओम मंडली में आए थे, है ना। जैसे दादी जी का नाम था रमा, तो बाबा ने उनका नाम रखा प्रकाशमणि, है ना। ऐसे ही दीदी का नाम था गोपी, तो बाबा ने नाम रखा मनमोहिनी। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का नाम बदल कर क्या हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, तो ये भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना, 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, 84 जन्म लेने के बाद तो एकदम साधारण है, ये सब आत्माओं के रथ हैं। ये सब मनुष्य सबके शरीर कौन है, आत्माओं के रथ। अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त यह है, सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, सिख लोग अकाल तख्त अलग से बताते हैं, उनको अकाल तख्त कहते हैं, यह तो अकाल तख्त सब है, सबके शरीर में एक अकाल तख्त है जिस पर आत्मा बैठी हुई है। तो बाबा ने कहा ये तो अकाल तत्व सब हैं, आत्माएं सब अकाल मूरत हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। काल मूरत कौन है? जो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा परमात्मा जो सदा ही है वो अकाल मूरत है। ऊंच ते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो बैक नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं शिव बाबा। नॉलेज फुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। बाबा नॉलेज फुल है उसका अर्थ अलग है, सर्वव्यापी होने का अर्थ बिल्कुल अलग है, और अंतर्यामी होने का अर्थ, तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जाने जाननहार है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जाने जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, हमारा कुल सबसे ऊंच है, ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। क्यों? बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है। तो क्यों ऊंच है देवताओं से भी? क्योंकि डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। देवताएं तो किसकी संतान है? देवताओं की। तो इसीलिए, क्योंकि इस समय हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, ये हीरे तुल्य जन्म है, और अभी हम सारे विश्व की सेवा भी करते हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊंच है। तो बाबा ने कहा वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं यह कोई जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है, हम ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने कहा जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। धामा माना उनको भोजन कराते हैं ना। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, हम तो पूजा भी नहीं करते हैं। किसी के यहाँ पूजा कराने थोड़ी जाते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो। मुख्य बात क्या है? ये तो सब राज की बातें हैं, समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आती हैं तो सब कुछ छोड़ क्या करो, बाबा को याद करो, कल्याण तो उसमें ही है। तो बाबा ने कहा फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो दिव्य बुद्धि मिलती जाएगी और इन बातों को भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आऊंगा ना। अब शिव बाबा निराकार है तो उसको कोई रथ तो चाहिए ना, तो दुनिया में से किसी को तो बाबा चुनेगा ना अपना रथ। तो बाबा ने कहा किसी में तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। माना ये बातें भक्ति वालों के लिए इतनी संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है ना, तो फिर इसीलिए बाबा ने कहा कि बहुत युक्ति से उनको ये बातें समझानी होती हैं। बाबा ने कहा नहीं तो प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना, प्रजा पिता ब्रह्मा भी यहां चाहिए जिससे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना, ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। तो संगम युग पर ही प्रजापिता ब्रह्मा होते हैं, बाबा ने कहा ये उनको पता नहीं, अभी तुम ब्राह्मण हो, भले जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हम सब सच्चे ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं, भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मणों का है ऊंच ते ऊंच कुल, वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, भले समझते हैं लेकिन पूरा राज नहीं जानते। बाबा ने कहा परंतु कैसे कब वह वर्णन कर नहीं सकते, तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है। क्यों डिनास्टी नहीं है ब्राह्मणों की? बाबा ने कहा राजा ही नहीं है, डिनास्टी किसकी होती है? राजाओं की। ये कुल है, ब्राह्मण कुल है, तो ब्राह्मणों का कुल है, डिनास्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनास्टी, राजा रानी है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं, वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था दोनों रॉन्ग है, राज्य ही नहीं था कौरवों पांडवों का, क्योंकि जब कौरव पांडव होते हैं तब किसका राज्य होता है? प्रजा का, प्रजा पर राज्य होता है। तो बाबा ने कहा दोनों रॉन्ग है, राजाई तो दोनों को नहीं है, हम पांडव हैं अभी तो हमको भी राजाई नहीं, और कौरव बाबा उनको कहते हैं तो उनको भी राजाई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण डबल ताजधारी थे, राजाई का भी क्राउन था और प्यूरिटी का भी क्राउन था, फिर द्वापर युग में हो गए सिंगल ताजधारी, सिर्फ राजाई का क्राउन रह गया, और इस समय तो नो ताज। तो यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे, ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते ये भी समझाना होता है, सही अर्थों में विष्णु कौन है, वो चार भुजाधारी क्यों दिखाए गए हैं ना, तो ये सारी बातें भी समझानी होती हैं। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था, श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है, साहूकार पास जन्म ले तो फिर प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में जब सतयुग शुरू होगा तब कृष्ण का जन्म दिखाते ना, तो राजा ही तो है नहीं, तो ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसे घर में जन्म होगा। तो बाबा ने कहा साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे, राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है, श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण को जन्म दिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई श्री कृष्ण से ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। हाँ, भले शास्त्रों में बताया है उनका नाम था वासुदेव, भागवत में बताते हैं ना वासुदेव और देवकी के पास जन्म हुआ, लेकिन असल में कौन था वो नहीं मालूम। तो बाबा ने कहा बाकी श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा, आगे चल मालूम पड़ सकता है, बनना तो यहां से ही है, ब्राह्मणों में से ही कोई होंगे, माना यहां से ही होंगे, राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। तो यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। फिर बाबा ने बात कही कि ब्रह्मा बाबा को समझाने का अकल चाहिए, वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है, तुम भी 84 जन्म लेते हो ना, ब्रह्मा अकेले तो नहीं आएंगे ना सतयुग में, फिर साथ में हम सब बाबा के बच्चे भी देवता के रूप में जन्म लेने वाले हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, फिर उसमें भी नंबर वार हैं, जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वो पहले आएंगे, माना यहाँ पढ़ाई में नंबर 1 है अच्छे हैं तो फिर वहां भी पहले नंबर में आएंगे। नंबर वार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके, नंबर वार जाते हैं, तुम ट्रांसफर होते हो नंबर वार, कितनी बड़ी क्यू है, दुनिया तो कितनी बड़ी है, जो पिछाड़ी में जाएगी, नंबर वार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे, सबका स्थान बना हुआ है। और यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परमधाम में भी हरेक का स्थान फिक्स है, वहीं पर जाकर के सेट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा परंतु कोई समझते नहीं है, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, यहां सब एक दो को दुख देते रहते हैं। कांटों का जंगल क्यों कहा, क्योंकि सब एक दो को दुख देते हैं, वहां तो नेचुरल सुख है, यहां है आर्टिफिशियल सुख, होता है लेकिन थोड़ा समय के लिए, फिर वापस दुख। तो बाबा ने कहा रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, यहां है काग विष्टा के समान सुख, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है, क्योंकि पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी तो चुकतू होने है ना, तो फिर कर्म भोग आते हैं तो दुख की फीलिंग आती है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। हाँ, चुकतू तो करना ही है, तो योग बल से करो, नहीं करोगे तो फिर मोचरा माना सजा, तो बावनी का सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, मानी बाबा कहते हैं जो प्राप्ति होती है, पद मिलता है, वैसे सिंधी में मानी को रोटी बोलते हैं। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है, क्योंकि पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं, आत्माएं भटकती भी बहुत है। जो जिनकी अकाले मृत्यु हो जाती है फिर वो आत्माएं भटकती भी हैं जब तक उनको शरीर मिले। तो बाबा ने कहा कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है, अब इविल सोल आ जाती है किसी में तो फिर कैसी दशा हो जाती है उनकी। तो बाबा ने कहा कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है, जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नहीं, दुनिया में यह बातें होती नहीं, क्योंकि वहां पे कोई अशुद्ध आत्माएं ही नहीं होती, तो ये सब बातें होने का सवाल ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। अब यहां जैसे घर तो नहीं होंगे ना सतयुग में, तो फिर नए महल बनेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। तो कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। तो वहां पर भी सारा, जैसे बाबा कहते हैं यहाँ पे इंजीनियर होते हैं तो वहां भी होंगे, लेकिन सब कुछ बहुत रिफाइन हो जाएगा और बहुत जल्दी महल तैयार हो जाएंगे। गाया भी हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। बाबा थोड़ा थोड़ा राज बताते हैं, सारा राज नहीं बताते। तो बाबा ने कहा वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोंद नहीं है, इसलिए ना विनाश भी होगा तो अचानक होगा। बाबा कहता है एक मिनट पहले भी नहीं बताएंगे बाबा, तो बताने की नोंद नहीं है, नहीं तो फिर वो ड्रामा कहलाएगा नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें ही फेल होते हैं। याद की यात्रा में ही फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सहज है, ज्ञान तो एक बार समझ लिया वो तो रहेगा ही बुद्धि में, लेकिन चाहिए क्या? याद की यात्रा। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो, कितना घंटा हमने बाबा को याद किया। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है और कभी कभी ढीला हो जाते हैं। नीचे ऊपर यात्रा होती है, ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो, है ना। देह अभिमान ही विकारों की जड़ है, तो देह अभिमान में आते हैं तो ही विकर्म होते हैं। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो काम विकार से होता है ना। क्रोध भी है, विकर्म बनता है, लेकिन उतना नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा ना हो। यूं तो ज्ञान एक सेकंड का है, सेकंड में जीवन मुक्ति, और नहीं तो इतना है, क्योंकि ज्ञान का सागर है बाबा, तो फिर इतना है ना। जैसे शास्त्रों में महिमा कहते हैं सारे सागर को शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारे पृथ्वी को कागज बनाओ, और स्वयं सरस्वती बैठकर लिखे तो भी लिख नहीं पाए, तो इतना है। तो बाबा ने कहा या तो सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो, सारी बात समझाकर बाबा सार में फिर यही कहते हैं अल्प और बे को याद करो। याद करना किसको कहा जाता ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। हाँ, अभी भी बारिश के मौसम में कई कई जगहों पर इतनी बारिश है कि बाढ़ आई हुई है। जैसे उत्तराखंड में अभी कोई धराली जगह है, वहां पर बादल फट गया और कितने लोग सेकंड में, माना पता भी नहीं चला, और सारा का सारा गांव ही बह गया। तो बाबा ने कहा कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, फिर थोड़ी पुरुषार्थ करने का टाइम होगा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, सब एक साथ होगा जब विनाश का समय होगा। तो बाबा ने कहा सब होगा, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर, रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारामारी होती है। भारत का जो है उसमें एडिशन सिविल वॉर की भी है। बाबा ने कहा एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर, सब है निधन के और तुम हो धनी के ना। बाबा हमेशा कहते हैं कौन लड़ता है जो निधन के होते हैं। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए, तो हमारा धनी कौन है? शिव बाबा। तो हम अब शिव बाबा के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हुई है, सगाई हो गई। अब आपसे हम मिले कैसे? तो भागकर मधुबन में आते हैं कि बाबा से मिलेंगे जाकर। तो बाबा ने कहा, पूछते हैं अब आपसे हम मिले कैसे? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। हाँ, भूलें तो होती रहती हैं, पर बाबा ने हमें ये विधि दी है कि बाबा को सच सच सुना दो। बाबा को सच सच सुना देंगे तो आधा माफ हो जाएगा और बाकी के लिए भी बाबा से शक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कहा, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं, तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। बाबा कितने कड़े शब्दों में कहते हैं, तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने ऐसा शब्द बोला है, हम तुमको गोरा बनाने के लिए आए हैं, तुम काला मुंह कैसे करते हो? भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे, बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। तो पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। जो जो भी भूलें करते हैं, बाबा ने कहा, बाबा फिर सबको लास्ट में साक्षात्कार कराएंगे, तो फिर पछताएंगे, नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है, तो इसीलिए फिर उनको माथा टेकते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, होते भी, मतलब सारा महत्व बाबा समझाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। याद नहीं करेंगे तो माया जीव बन नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। वो जन्म पत्री में भी अलग अलग दशाएं बताते हैं ना, तो सबसे बुरी होती है राहु की दशा, फिर नेक्स्ट होती है शनि की दशा, और सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। तो बाबा बृहस्पति नहीं, वृक्षपति बोलते हैं। शिव बाबा जो हैं वो वृक्षपति हैं, और अब वो दशा हमारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा, दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर, तो हम बच्चों पर भी जब राहु की दशा आ जाती है तो फिर ये गफलत होती है, जो बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरा है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भाव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। तो सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो सबकी दुआएं मिलती हैं और खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व का अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। स्लोगन, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। क्योंकि जो संतुष्ट होते हैं वही प्रसन्न रहते हैं। तो हर्षित मूर्त होंगे तो आकर्षित मूर्त होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या विलीन हो जाती है। बाबा ने कहा असल में है लवलीन, लवलीन अवस्था। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। दादी जी की विशेषता है, ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करने और कराने वाली। दादी जी सदा ईश्वरीय मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करती और सबको यही कहती कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इन्हें दृढ़ता से पालन करो। तो जो भी नियम बाबा ने हमें दिए हैं, खान पान का नियम, पवित्रता का नियम और पढ़ाई का नियम, बाबनी का जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इन्हें दृढ़ता से पालन करो। एक छोटी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता है। किसी के करैक्टर पर कभी दाग न लगे, मेरे करैक्टर पर कोई आंच न आए, इसके लिए आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे। ओम शांति।